राम श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी तृतीय अध्याय श्लोक 43 ट्रेक 39।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोध्याय अवतरणिका। श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश मानव मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ होकर सबसे पहले भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य असत एकदेशी और नाशवान है तथा शरीरी नित्य सत सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा न करना विवेक कहा जाता है। कर्मयोग ज्ञानयोग और भक्ति योग तीनों ही योगों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्गादि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपर्युक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा अनात्मा प्रकृति पुरुष ब्रह्म अविद्या ईश्वर जीव जगत माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सकें ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य मात्र परमात्म प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपर्युक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया। वास्तव में नित्य और अनित्य सत और असत अविनाशी और विनाशी शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रदान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तव में है, और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्मयोग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके। जैसे सांख्य योग में विवेक की मुख्यता होती है, भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता होती है, ऐसे ही कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की प्रधानता रहती है। कर्मयोग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास नहीं होते ऐसा नहीं है, पर मुख्यता एक निश्चयात्मिका बुद्धि की रहती है। ऐसे ही सांख्य और भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्म प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती, और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है। बुद्धि को सम करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व आकर्षण और खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व आकर्षण खिंचाव स्वतः मिटने लगता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते योगस्थ कुरु कर्माणि, तेरा कर्म करने में अधिकार है, समता में स्थित हुआ तू कर्म कर। इसके साथ यह भी कहते हैं कि दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगात्, बुद्धि योग अर्थात समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छे, बुद्धि युक्त तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाई युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। तो संबुद्धि का आश्रय ग्रहण कर समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहाँ जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है, इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन स्वयं कहते हैं, युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। फिर 45वें श्लोक में वो कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर के भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। आगे दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं, श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यम अपि है लोके। और 9वें श्लोक में तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ है परंतप के विरुद्ध अपना निर्णय सुना देते हैं कि मैं युद्ध तो नहीं करूंगा, न योत्स्य है। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपर्युक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ते हैं। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन समझते हैं, इसका खुलासा कराने के लिए अर्जुन आगे के दो श्लोकों में भगवान से प्रश्न करते हैं।